आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। आज से शुरू हो रहा है विधानमंडल का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक में की सदन को सुचारू रूप से चलाने में सभी दलों से सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को प्रदेश के लिए बताया महत्वपूर्ण। कहा, विभिन्न उद्योगों को मिलेगा लाभ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। दलहन उत्पादन के लिए केंद्र सरकार से मिली 125 करोड़ की सहायता। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के संकल्प को पूरा करने में इस सहायता से मिलेगी मदद। और प्रदेश में हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए कल विधान भवन में सर्वदलीय बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में सदस्यों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाएगा।
विधानसभा का मंच चर्चा परिचर्चा के लिए है। सहमति और असहमति लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन चर्चा लोग करें। क्रॉस करने से न विपक्ष की बात आ सकती है, न सरकार अपनी बात कह सकता है। सभी नेताओं ने इस बात का मुझे आश्वासन दिया है कि विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चलेगा, उनको बोलने का अवसर दिया जाए। मैंने भी ये कहा कि मैं पर्याप्त अवसर सभी माननीय सदस्यों के लिए दूंगा। शाम को 8 बजे तक भी हम हाउस चलाने की जरूरत पड़ी तो उसको भी चलाएंगे, ताकि सब लोगों को अवसर मिल सके।
नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के हित से जुड़े हर मुद्दों पर सदन में सुचारू रूप से चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी सदन में कानून व्यवस्था और बेरोजगारी सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा पर जोर देगी। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। राज्यपाल दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इसके बाद औपचारिक कार्य होंगे। 10 फरवरी को विधानसभा सदस्यों के निधन संबंधी सूचना पढ़े जाने के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा। बजट सत्र के दौरान कई अध्यादेशों को भी पेश किया जाएगा। 11 फरवरी को सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। 12 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। 13 फरवरी को चर्चा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर अपना जवाब पेश करेंगे। 16 से 20 फरवरी तक सदन में विभागीय बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी और इस दौरान कई अध्यादेशों को पेश किया जाएगा। बजट सत्र को लेकर विधान भवन के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विधान भवन के सामने की मुख्य सड़क और अन्य मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौते से प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि समझौते के तहत जारी टैरिफ ज्वाइंट स्टेटमेंट ने उत्तर प्रदेश की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत संकेत दिया है। भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को औसतन 50% से घटाकर 18% और चुनिंदा श्रेणियों में शून्य किए जाने का प्रावधान ऐसे समय आया है जब राज्य सरकार श्रम प्रधान उद्योगों, MSME और क्लस्टर आधारित विनिर्माण को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टैरिफ कटौती से श्रम प्रधान उद्योगों को नीतिगत समर्थन मिलेगा, जिससे भदोही, मिर्जापुर कालीन और वाराणसी सिल्क उद्योगों की पहुंच बाजार में और बेहतर होगी। वहीं कानपुर आगरा लेदर क्लस्टर के लिए लागत दबाव में कमी आएगी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को कृषि और किसानों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि प्रमुख कृषि उत्पादों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। एक रिपोर्ट।
भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कहा कि इस डील में भारतीय कृषि की शुद्धता बरकरार रखी गई है।
सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई।
श्री चौहान ने कहा, हकीकत ये है कि जो भी चीजें हमारे किसानों की ताकत हैं, उन सब को इस समझौते से बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 125 करोड़ रुपए का चेक प्रदान करने के लिए आभार जताया। श्री शाही ने कहा है कि यह वित्तीय मदद राज्य के किसानों की आय में वृद्धि, पोषण, सुरक्षा और दलहन आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश वर्तमान में देश के शीर्ष दलहन उत्पादक राज्यों में शामिल है। केंद्रीय बजट को लेकर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने कल पत्रकार वार्ता कर बजट को विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मिर्जापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बजट में आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय अनुशासन और सुशासन को प्राथमिकता दी गई है। संत कबीर नगर में ग्राम में विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि 53,47,315 करोड़ का यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% अधिक है। यह हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है। प्रदेश भर में चाइनीज मांझे के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि चाइनीज मांझे के उत्पादन, बिक्री और भंडारण से जुड़े हर व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। श्री योगी ने चेतावनी दी है कि चाइनीज मांझे से कोई घटना हुई तो सिर्फ विक्रेता ही नहीं बल्कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी जिम्मेदार माना जाएगा। कल रायबरेली जिले में हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली दुर्घटना तब हुई जब रायबरेली के निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर एक अनियंत्रित कार ने पैदल जा रही युवतियों को कुचल दिया जिससे 4 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 घायल हो गईं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी युवतियां भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर लौट रही थीं। रायबरेली में हुई एक अन्य सड़क दुर्घटना में 2 तेज रफ्तार दोपहिया वाहनों के बीच टक्कर के चलते 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्र सरकार ने आयकर नियमों और प्रपत्रों 2026 के मसौदे पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। ये टिप्पणियां इस महीने की 22 तारीख तक आयकर कार्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर भेजी जा सकती हैं। आयकर कार्यालय ने सूचित किया है कि मसौदा नियम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और सहभागी तथा प्रभावी नियम निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के तराई क्षेत्र में कहीं कहीं घना से लेकर अत्यंत घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में मौसम शुष्क बना रहेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से शुरू हो रहा है विधानमंडल का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक में की सदन को सुचारू रूप से चलाने में सभी दलों से सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को प्रदेश के लिए बताया महत्वपूर्ण। कहा, विभिन्न उद्योगों को मिलेगा लाभ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। दलहन उत्पादन के लिए केंद्र सरकार से मिली 125 करोड़ की सहायता। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के संकल्प को पूरा करने में इस सहायता से मिलेगी मदद। और प्रदेश में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।